Recording started. جزاكم الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو اس آیت کی تفسیر ہم نے پڑھنی شروع کر دی تھی پچھلی کلاس میں. اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس کے اوپر فرشتے مقرر ہیں، تنخو اور زبردست شدید، جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، جو ان کو حکم کیا جاتا ہے اس میں، اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم کیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد اے کافروں، یا ایھا الذین کفروا، آج تم معذرت نہ کرو. انما تجزون ما کنتم تعملون، سوائے اس کے نہیں کہ تم وہی جزا پاؤ گے جو تم عمل کیا کرتے تھے. تو اس کے تحت ہم نے جہنم کی آگ کے بارے میں بھی کچھ بات کری تھی، یہ انتہائی سخت آگ ہوگی. حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا کی آگ کی جتنی گرمی ہوتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ گرمی جہنم کی آگ کی ہوگی، 70 گنا زیادہ. اب یہ جو لفظ 70 ہے نا، اس کی بھی تفصیل ہے کہ 70 یا 700 یا 7000، اس طرح کا جب عدد استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان کے اندر تو اس کا مطلب ایگزیکٹ نمبر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے کہ بھائی 70 گنا کا مطلب یہی ہوگا کہ ایگزیکٹلی میتھمیٹیکلی کیلکولیٹ کر کے دنیا کی گرمی جتنی ہے اس سے، دنیا کی آگ کی جتنی گرمی ہے اس کو ملٹیپلائی کریں 70 ٹائمس تو جہنم کی آگ کی گرمی نکلے گی. بلکہ اس کا مطلب جو ہے وہ بہت زیادہ کے معنی میں ہوتا ہے، اور یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ اردو زبان کے اندر ہم بیسیوں کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا درجنوں کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو درجنوں کا مطلب صرف 12 یا 24 یا اس کے ملٹیپلز میں نہیں ہوتا، یا بیسیوں کا مطلب 20 یا 40 یا 60 یا 80 اس طرح نہیں ہوتا، بلکہ مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ. تو اسی طریقے سے عربی زبان میں بھی جب 70 یا 700 کا عدد استعمال کیا جاتا ہے تو مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ. ٹھیک ہے، تو اس دنیا کی جتنی آگ کی شدت ہے اس سے 70 گنا زیادہ، یعنی بہت زیادہ شدت جو ہے وہ جہنم کی آگ کی ہے. جہنم کی آگ میں اور اس دنیا کی آگ میں ایک اور بھی بہت واضح فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ اس دنیا کی آگ کو جب روشن کیا جاتا ہے تو اس کے لیے لفظ روشن استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ابھی ساجد نے استعمال کیا روشن کرنا، کیونکہ دنیا کی آگ کے اندر روشنی ہے، گرمی بھی ہے لیکن روشنی بھی ہے. جبکہ جہنم کی جو آگ ہے اس کے اندر گرمی دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا سے زیادہ ہے لیکن روشنی اس کے اندر نہیں ہے، اس آگ سے کسی قسم کی روشنی نہیں ہوگی بلکہ اندھیرا ہی رہے گا. اس دنیا کی آگ کو اگر آپ سٹڈی کریں سائنٹیفکلی، اگر آپ یہ جو فلیم ہوتا ہے نا جو شعلہ کہلاتا ہے آگ کا، تو اس کو اگر آپ سٹڈی کریں تو اس فلیم کے بہت سارے پارٹس ہوتے ہیں. ان میں سے نا کچھ پارٹس جو ہوتے ہیں وہ ज्यादा गर्म होते हैं और कुछ पार्ट्स उसके कम गर्म होते हैं। बाकायदा फ्लेम के ना आप तस्वीर कभी देखें तो उसमें मुख्तलिफ पार्ट्स दिखाएंगे, उनमें से जो एक येलो पार्ट होता है ना, वो येलो पार्ट जो होता है वो ज्यादा गर्म नहीं होता, लेकिन उसके अंदर से रोशनी पैदा होती है, रोशनी पैदा होती है। लेकिन इसी फ्लेम के अंदर जो सबसे आउटर मोस्ट, सबसे ज्यादा बैरूनी जो हिस्सा होता है इस फ्लेम का, वो सबसे ज्यादा गर्म होता है। 1000 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होता है। और ये जो बाहर वाला हिस्सा होता है ना, ये हिस्सा जो होता है ये नॉन ल्यूमिनस जोन कहलाता है। नॉन ल्यूमिनस यानी इस जोन के अंदर, यानी इस हिस्से से शोले के कोई रोशनी पैदा नहीं होती। इसके अंदर गर्मी भी सबसे ज्यादा होती है और इसके अंदर कोई रोशनी भी नहीं होती। तो लगता है ऐसा है कि जहन्नुम की जो आग होगी वो इस दुनिया की आग का जो सबसे ज्यादा जो गर्म हिस्सा है, और जो कि नॉन ल्यूमिनस हिस्सा है ना, अल्लाह ताला ने उस वाले हिस्से को जहन्नुम के अंदर रखा है, ठीक है, कि उससे गर्मी भी ज्यादा हो और उससे जो है वो रोशनी भी क्रिएट ना हो। तो जहन्नुमी सख्त अंधेरे में भी होंगे और सख्त गर्मी में भी होंगे। तो ऐसी जहन्नुम से बचने के लिए अल्लाह ताला ईमान वालों को कह रहे हैं कि ये मत समझना कि तुम चूंकि ईमान एक दफा ले आए हो, कलमा पढ़ लिया है, तो अब जरूरी है कि तुमने मरना भी इसी हालत में है। ये कोई गारंटी नहीं है। तुमने अपने इस ईमान की हिफाजत करनी है, इसको मौत तक लेके भी जाना है। यानी ईमान ले आना एक काम है और फिर उसको मौत तक बचाना ये दूसरा काम है। इस ईमान की हिफाजत करनी पड़ती है। किससे हिफाजत करनी पड़ती है? कौन है जो कि इस ईमान को हमसे चुराना चाहता है? इस ईमान का डाकू है वो शैतान है। वो मुस्तकिल ये इस कोशिश के अंदर लगा रहता है कि किसी तरह इस बंदे का ईमान खत्म हो जाए। शकूक में मुब्तला करता है, वसवसे डाल डाल करके कोशिश ये करता रहता है कि ये शक में मुब्तला हो जाए ईमान के बारे में, अल्लाह के बारे में, कयामत के बारे में, रसूल के बारे में, किताबों के बारे में, फरिश्तों के बारे में, दोबारा उठाए जाने के बारे में और तकदीर के बारे में। ये बुनियादी चीजें ईमान की, इनमें से किसी एक के बारे में भी इंसान शक में मुब्तला हो जाए तो वो काफिर हो जाता है, इसका ईमान जायल हो जाता है। और शैतान इस कोशिश के अंदर मुस्तकिल लगा रहता है। हत्ता के बुजुर्गों ने यहां तक बताया कि आखिर वक्त तक ये कोशिश करता रहता है। जब इंसान के ऊपर आखिरी वक्त आता है, हालत नजा, तो उस वक्त ये शैतान उसके करीबी रिश्तेदारों के रूप में आता है। जैसे कि इसके माँ बाप का अगर इंतकाल हो चुका होता है तो ये उन माँ बाप की का रूप धार करके आता है। इसको अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है कि ये इंसानों की शक्ल में आ सके। हमारे अंदर ये सलाहियत नहीं है कि हम किसी दूसरे का रूप धार करके जो है वो किसी के पास चले जाए, लेकिन ये रूप धार करके आ सकता है। यानी ये है तो आग से बना हुआ, ये हमें नजर नहीं आता, लेकिन ये इंसानी शक्ल में आ सकता है, नजर आ सकता है इंसानों को। तो ये माँ बाप की शक्ल में आता है और आकर के उससे उस वक्त में कहता है, जब ये हालत नजा में होता है, बहुत मुश्किल हालात में होता है, तकलीफ में होता है, कहता है कि मैं देखो तुम्हारा मैं बाप हूं, मैं तुमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला हूं, मैंने आगे की मंजिलें देख ली हैं। कुछ भी नहीं होता आगे, कोई हिसाब किताब नहीं होता, कोई कब्र के अंदर मुनकर नकीर नहीं आते। ये सारी बातें जो तुम्हें कही जा रही थी ना, ये सारी बातें झूठी थी। मैं तो देख कर आया हूं ना, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूं, ये कुछ नहीं होता। उस वक्त ये शख्स जो है वो इसकी बात पर यकीन कर लेता है और काफिर हो जाता है, क्योंकि आगे की मंजिलों के बारे में जो बातें हदीस में बताई गई हैं, कुरान में बताई गई हैं, वो इन सब के बारे में शक में मुब्तला हो जाता है, इनकार कर बैठता है, और इस तरीके से इंसान जो है वो काफिर होकर के मर जाता है। तो शैतान का ये मामला है। हजरत अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े फकीह गुजरे हैं, जब उनके ऊपर आखिरी वक्त आया था बिल्कुल हालत ऐसे लग रही थी कि अब ये जिंदा नहीं बचेंगे। तो इनके साथ इनके तलबा जो फिका पढ़ते थे इनसे, हदीस पढ़ते थे इनसे, वो इनके साथ जमा थे और इनको कलमा याद दिलाना शुरू हो गए। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरीके से कलमा याद दिलाया जाता है उस बंदे को जिसके आखिरी वक्त आया हुआ होता है। तो उस वक्त हजरत अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ एक बात कहते थे, ला ला, कलमा नहीं पढ़ रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ रहे, सिर्फ कह रहे हैं ला ला। तो शागिर्द बहुत परेशान हो गए कि हमारे उस्ताद साहब को क्या हो गया, ये आखिरी वक्त में कलमा क्यों नहीं पढ़ रहे, बल्कि ये तो लगता है उल्टा इनकार कर रहे हैं, ला पढ़ रहे हैं खाली। तो अल्लाह का करना ये हुआ कि उनकी तबीयत संभल गई और मौत उस वक्त नहीं आई उन पर। तो फिर शागिर्दों ने पूछा कि हजरत हम आपको कलमा याद दिला रहे थे और आप कह रहे थे ला। तो हजरत अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह ने जवाब दिया कि हाँ, मैं इसलिए ला कह रहा था क्योंकि उस वक्त शैतान मेरे सामने आया हुआ था और वो ये कह रहा था कि ए अहमद इब्न हम्बल, तू अपना ईमान बचा करके इस दुनिया से जा रहा है, तू मेरे चुंगल से बच गया है, तेरे ऊपर मेरा दांव नहीं चल सका, तू ईमान के साथ इस दुनिया से जा रहा है। और मैं उसको जवाब दे रहा था ला, नहीं, मैं अभी तक तेरे दांव से बचा नहीं हूं, जब तक मेरे अंदर जिंदगी बाकी है उस वक्त तक मैं तुझसे अपने आप को महफूज नहीं समझ सकता, तू झूठ बोल रहा है। तो मैं उसको जवाब दे रहा था ला। तो शैतान इतने बड़े बड़े लोगों को बहकाने की कोशिश करता रहता है, तो फिर हम क्या करेंगे? तो इस वजह से ना, इस शैतान से बचने के लिए, अपने ईमान को बचाने के लिए एक ही रास्ता है कि हम तकवा इख्तियार करें, हम अल्लाह ताला से डरें, अल्लाह ताला से मांगें, दुआएं मांगते रहें हर वक्त। और जो तरीका है दवा इख्तियार करने का, एक होता है दुआ करना और दुआ के बाद दवा करना। तो दुआ करना, अल्लाह ताला से मांगना ईमान की हिफाजत, रो रो करके ईमान की हिफाजत मांगना अपने लिए और अपने औलादों के लिए। और दूसरी चीज होती है दवा करना। दवा क्या है? सुन्नत का तरीका इख्तियार करना, जो तरीका नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में लेकर के आए थे, जो तरीका सहाबा कराम ने इख्तियार किया था अपने ईमान की हिफाजत का, वही तरीका इख्तियार करना, ये दवा करना कहलाता है। तो कोई भी काम करना होता है तो हम दुआ और दवा दोनों के जरिए से वो काम करते हैं। उसी तरीके से ईमान की हिफाजत के लिए भी दुआ और दवा दोनों करने की जरूरत पड़ती है। तो जहन्नम की आग से बचने के लिए हमने अपने अपने आप को भी बचाना है और अपनी औलादों को भी बचाना है। अब ये जो हमने इबारत पेज नंबर 503 के ऊपर पढ़ी थी कि बीवी और औलाद की तालीम और तरबियत हर मुसलमान पर फर्ज है, तो इसमें लिखा था कि हर शख्स पर फर्ज है कि अपनी बीवी और औलाद को फराइज शरिया और हलाल और हराम के अहकाम की तालीम दे और उस पर अमल कराने के लिए कोशिश करें। तो पिछली क्लास में हमने कहा था कि इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, तो अब करते हैं बात इसके ऊपर कि कोशिश करने से क्या मुराद है, कि अपनी बीवी और बच्चों को के ईमान की हिफाजत की कोशिश करे, यानी फराइज शरिया और हलाल और हराम के अहकाम की तालीम दे। तो इसका मतलब ये होता है कि जितना इससे हो सकता है ये उनको अच्छा माहौल प्रोवाइड करे, ऐसा माहौल कि जिसके अंदर वो हलाल और हराम के ऊपर अमल कर सकें, हलाल पे अमल कर सकें और हराम से बच सकें। बुरे माहौल से बचाना, क्योंकि इंसान का जैसा माहौल होता है ना, वो आसानी के साथ उसी माहौल के अंदर घुल मिल जाता है, उस माहौल का असर उसके ऊपर हो जाता है। तो अच्छा माहौल प्रोवाइड करना, इस माहौल के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ये माहौल जो है वो ऐसे ही नहीं बन जाता। माहौल के लिए मेहनत कैसे करनी पड़ती है? जो नेक लोग होते हैं उन नेक लोगों के साथ अपना ताल्लुक बढ़ाना होता है, नेक लोगों के साथ अपना ताल्लुक बढ़ाना होता है, और जो नेकी के रास्ते पर नहीं होते हैं उनसे अपने ताल्लुक को घटाना होता है। यह होता है अच्छा माहौल प्रोवाइड करना, बुरे माहौल से बचना। अब इसके अंदर हमारी ख्वाहिशात आड़े आती हैं, क्यों? इसलिए कि जो नेक लोग होते हैं उमूमन उनके पास दुनिया की लज्जतें नहीं होती। जो नेक लोग होते हैं, दीन के रास्ते पर चलने वाले लोग होते हैं, उनके पास दुनिया की चकाचौंध नहीं होती, दुनिया नहीं होती, माल दौलत नहीं होती। उमूमन ऐसे लोग जो होते हैं वो कम में गुजारा कर रहे होते हैं। तो नेकों की सोबत अख्तियार करना वैसे तो बड़ी आसान बात लगती है, लेकिन इसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या होती है कि हमारा नफ्स जो है वो चाहता नहीं है उनकी सोबत अख्तियार करना, अपने औलादों को उनकी सोबत में देना, बिकॉज उनकी जिंदगियां जो होती हैं वो वैसी नहीं होती जैसी कि हम चाहते हैं। अगर कोई बहुत माल दौलत वाला नेक इंसान मिल जाए तो बड़ी खुशी के साथ हम चाहेंगे कि हम उसके साथ रहना शुरू कर दें, लेकिन ऐसे लोग मिलते नहीं हैं। जबकि इसके बरक्स जो गुनाहों के रास्ते के ऊपर होते हैं उनके पास बड़ी हमें लज्जतें नजर आती हैं, बड़ी आसाइशें नजर आती हैं, बड़ी तरक्कियां नजर आती हैं, बड़े उनके पास दुनिया के मुकामात नजर आते हैं, मनसब नजर आते हैं, दुनिया की इज्जतें, लोग उनकी बड़ी इज्जत कर रहे होते हैं, लोग उनके जैसा बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, बहुत सेलिब्रिटी होते हैं वो, लोग उनको अपना आइडियल बना करके जिंदगी गुजारना चाहते हैं। तो उनसे बचना जो है उसके रास्ते में रुकावट क्या आती है? हमारी अपनी ख्वाहिशात, क्योंकि हम उनके जैसे बनना चाहते हैं, तो अब उनसे हम बचें कैसे? आखिरत की खातिर बचें, वो आखिरत जो कि हमें नजर ही नहीं आती, वो आखिरत जिसके खाली वादे हमें किताबों के अंदर मिलते हैं, जो कि हमें दुनिया के अंदर नजर नहीं आती, तो हम उसकी खातिर जो है इन लोगों की सोहबत से अपने आप को और अपनी औलादों को कैसे बचाएं? तो रुकावट क्या चीज बनती है? हमारी अपनी ख्वाहिश बनती है। तो अगर हम अपने औलादों को बुरे माहौल से नहीं बचाएंगे और अच्छे माहौल का हिस्सा नहीं बनाएंगे तो इससे हमारी और हमारी औलाद की आखिरत बर्बाद हो जाएगी। तो अपने आप को ना थोड़ा इसके ऊपर बिठाना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि हमेशा हमेशा की जिंदगी की खातिर इस दुनिया की जिंदगी की थोड़ी सी तकलीफों को बर्दाश्त कर लो, थोड़ी सी कमी को बर्दाश्त कर लो, और जहन्नुम से बचने के लिए इस दुनिया की लज्जतों को छोड़ दो। इसके लिए अपने जहन को समझाना पड़ता है। किसी ने प्राइवेटली मैसेज लिखा है तो अब मुझे पढ़ करके आप लोगों को सुनाना होगा, क्योंकि आप लोग तो पढ़ नहीं सकते। After facing all duniya ki difficult at the last, after facing all duniya ki difficulty at the last moment, such shaitan ka strong harba. Why Allah kept like this? That all over iman goes. Yani sari zindagi aap kehna ye cha rahi hain ki sari zindagi jo hai our iman, acha all our iman goes. Ye sari zindagi jo hai wo humne takleefein uthai hain और उसके बाद जो है वो आखिरी वक्त में शैतान का ऐसा मजबूत हरबा कि हमारा ईमान ही खत्म हो जाए। तो अल्लाह ताला ने ऐसा मामला रखा क्यों है, है ना भाई? बड़ा अच्छा सवाल किया वैसे उन्होंने कि अल्लाह ताला ने ऐसा मामला क्यों रखा है कि हम सारी जिंदगी भी तकलीफें उठाएं और मरने के वक्त जो है वो ईमान से भी महरूम हो जाएं और फिर उसके बाद जो है वो जहन्नुम में चले जाएं और वहां पे जाकर के भी हमेशा हमेशा की तकलीफ उठाते रहे। तो अल्लाह ने ऐसा क्या मामला, ऐसा मामला क्यों रखा? ठीक है, देखें, अल्लाह ताला ने तो ऐसा मामला रखा नहीं है। ठीक है, अल्लाह ताला ने ऐसा मामला रखा नहीं है, लेकिन हम अपने साथ ऐसा मामला करते हैं। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ना हमें बे इंतहा नेमतें दी हैं, बे इंतहा ला तादाद ऐसी नेमतें दी हैं कि जिनका हम शुमार नहीं कर सकते, उनका अदद नहीं हम समझ सकते। ठीक है, इतनी नेमतें हमें दी हैं, हमारी नजर उन नेमतों की तरफ जाती नहीं है। ठीक है, हमारी नजर किस तरफ जाती है? हमारी नजर जो है وہ ان تکلیفوں کی طرف جاتی ہے جو کہ ہماری زندگی میں آ رہی ہوتی ہیں ہمارے اپنی گناہوں کی وجہ سے، ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے۔ جو ہماری زندگی میں تکلیفیں آ رہی ہوتی ہیں نا، ہماری نگاہ جو ہے وہ صرف اس طرف جا رہی ہوتی، ہماری نگاہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف نہیں جا رہی ہوتی۔ کیوں نہیں جا رہی ہوتی؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہمارا جو تعلق ہوتا ہے وہ شیطان کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ہم نے رحمان کے بندوں کے ساتھ اپنا تعلق نہیں بنایا ہوتا، ہم نے رحمان کی کتاب کے ساتھ، رحمان کے کلام کے ساتھ اپنا تعلق نہیں بنایا ہوتا، صرف ہمارا تعلق شیطان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو شیطان کا تو کام ہی ہے کہ نعمتوں سے اللہ تعالیٰ کی ہماری نظروں کو ہٹائے، اور جو آزمائشیں ہیں ان کے اوپر ہماری نظروں کو جمائے کہ دیکھو تمہاری زندگی میں تو صرف تکلیفیں ہی تکلیفیں، تم نے تو کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں۔ یہ کس وجہ سے ایسا ہو رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارا تعلق نیکوں سے ہوتا نہیں ہے۔ ہم نے اسی وجہ سے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے وجہ بتائی گئی ہے نا کہ نیکوں کے پاس دنیا کی آسائشیں کم ہوتی ہیں، چکا چوند کم ہوتی ہے ان کے پاس، تو ہم ان سے دور بھاگتے ہیں، ہم اپنی اولادوں کو ان سے دور بھگاتے ہیں۔ اور جو دنیا والے ہوتے ہیں، گناہگار ہوتے ہیں، ان کے پاس دنیا کی چکا چوند زیادہ ہوتی ہے، ہم ان سے اپنا تعلق بنانا چاہتے ہیں۔ جب ان سے اپنا تعلق بنائیں گے نا تو اس کی سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو ہمارے اوپر مسلط کر دیتا ہے، اور پھر شیطان جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں کو ہماری نگاہوں سے چھپاتا ہے، اور جو چھوٹی چھوٹی تکلیفیں ہماری زندگی میں آئی ہوئی ہوتی ہیں ان کو بہت بڑا بڑا بنا کر کے پیش کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے نا ہمارے ذہن میں یہ تصور ہو جاتا ہے کہ ہم نے ساری زندگی تکلیفیں ہی تکلیفیں دیکھی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہم نے بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی انجوائے کری بھی ہوتی ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہاتھ پیر ہیں ہمارے پاس، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ یہ جو آنکھیں ہماری دیکھ رہی ہوتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ یہ جو ہم کھانا کھا کر کے ہضم کر لیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ یہ جو ہمارے پاس اولاد ہے کہ جو کہ مینٹلی ریٹارڈڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی آزمائش کی کوئی نہ کوئی شکل دنیا میں رکھی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کی اولاد ایسی ہو جو کہ مینٹلی ریٹارڈڈ ہو، لیکن 100 میں سے کتنوں کی ہوتی ہے مینٹلی ریٹارڈڈ؟ 99 سے زیادہ لوگ، 99% لوگوں کی اولاد ٹھیک ہوتی ہے۔ اسی طرح سے کوئی کہے نہیں میرا ہاضمہ تو ٹھیک نہیں ہوتا، تو میں نے مثال دی کہ جی ہاضمہ ہمارا ٹھیک ہے، تو وہ کہے گا نہیں میرا تو ہاضمہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے بندے تمہارا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہے نا، لیکن کیا سب لوگوں کا ہاضمہ خراب ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی جو میجورٹی بندے ہوتے ہیں ان کے پاس نعمتیں، عمومی نعمتیں ساری کی ساری ہوتی ہیں، بہت ساری نعمتیں۔ وَلَا تَعُدُّوا نِعْمَتُ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ خود قرآن کے اندر ہمیں یاد دلاتے ہیں۔ ہم تو قرآن کو کھول کے نہیں دیکھتے نا، قرآن کے ساتھ تو ہمارا تعلق ہوتا نہیں ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دہانیاں کروا رہے ہوتے ہیں ان سب چیزوں کی، اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلا رہے ہوتے ہیں۔ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا بھی چاہو گے نا تو تم شمار نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ہمیں بار بار یاد دلاتے ہیں۔ وَلَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ یہ لوگ اپنی جانوں کے اوپر خود ظلم کرتے ہیں، میری نافرمانی کر کے، میری نعمتوں کی ناشکری کر کے یہ لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ تو اس قرآن کے ساتھ ہم نے اپنا تعلق بنایا نہیں ہے، قرآن والوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا نہیں ہے، ہمارا تعلق بالی ووڈ کے ایکٹرز کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارا تعلق ڈراموں کے سیریلز کے ساتھ ہوتا ہے، ٹی وی کی سیریلز، ہمارا تعلق جو ہے وہ اپنے دوستوں سہیلیوں کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ صرف دنیا کی باتیں کرتی ہیں۔ اس قسم کی چیزوں کے اندر ہم نے اپنے آپ کو مستقل بزی کر کے رکھا ہوا ہے، ہمارے لیے اللہ کے ذکر کے لیے وقت نہیں نکلتا ہمارے پاس۔ تو ہماری نا یہ ساری کی ساری گناہ ہوتے ہیں کہ جن کا عذاب ہمارے اوپر یہ آ رہا ہوتا ہے کہ ایک تو ہماری زندگی میں جو تنگیاں ہیں نا، جو پریشانیاں ہیں، وہ پریشانیاں بھی ہماری نافرمانی کی وجہ سے ہوتی ہیں، ہماری اس ناقدری کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ناقدری کرنا چھوڑ دیں نا، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا چھوڑ دیں نا، تو ہماری یہ پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں۔ لیکن ہم اپنے ہاتھوں سے سمیٹ رہے ہوتے ہیں ان پریشانیوں کو. ہم نہ مان کر کے, یہ جو ہمارا ہے نا ایٹیٹیوڈ, میں نہ مانوں, میں نہیں مانوں گی, میں نہیں مانوں گی بات, یہ میں ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے. اس کی وجہ سے ہم پریشانیاں نا اپنی طرف دعوت دے رہے ہوتے ہیں پریشانیوں کو. تو جب اس طرح کے ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں, اس طرح کی ہم ضد اور ہٹ دھرمی والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے, میری زندگی میں تو کوئی سکھی نہیں ہے, میری زندگی میں تو کوئی آسانی ہے ہی نہیں, میں نے تو صرف تکلیفیں دیکھی ہیں, اور اس کے بعد پھر مرنے کے وقت بھی میرے لیے اتنی تکلیف ہوگی. نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ زندگی تقوی والی گزاریں, سنت والی زندگی گزاریں, آخری وقت میں شیطان آئے گا, بالکل آئے گا, لیکن شیطان کو بھگانے کے لیے فرشتے بھی آئیں گے. احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شیطان آیا تو کیا وہ کافر ہو کر کے مرے؟ کافر تو نہیں ہوئے. شیطان تو اپنی محنت کر کے چلا گیا, لیکن ناکام ہو کر کے گیا نا, ان کو کافر کر تو نہیں سکا. تو بھائی جس طرح احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تقوی والی زندگی گزار سکتے ہیں, ہم کیوں نہیں تقوی والی زندگی گزار سکتے؟ جب اللہ تعالیٰ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے آخری وقت میں حفاظت فرماتے ہیں, ہماری کیوں نہیں حفاظت فرما سکتے؟ بالکل فرماتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا کی زندگی میں جس نے صبر کیا ہو, ایمان کے اوپر, عمل صالح کے اوپر استقامت کے ساتھ جمع ہوا ہو, آخری وقت میں اللہ تعالیٰ اس کو ایمان سے محروم کر دیں, شیطان کو اجازت دے دے کہ ہاں اس کو ایمان سے محروم کر دو. نہیں, ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ کوئی دہشتناک قسم کی چیز نہیں ہے کہ ان کو لوگوں کو جہنم میں پھینک کر کے خوشی ہوتی ہو. اللہ تعالیٰ کو خوشی نہیں ہوتی پھینک کر کے جہنم میں کسی کو بھی, اور یہ بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کر کے؟ لئن شکرتم وآمنتم, اگر تم شکر کرو گے اور ایمان لے کر کے آؤ گے, اللہ تعالیٰ کو کیا ملے گا عذاب دے کر کے؟ خود قرآن عظیم الشان میں اللہ تعالیٰ کے یہ الفاظ موجود ہیں. تو بھائی ہم کیوں نہیں کرتے, بات کیوں نہیں مانتے, کیوں اتنی ضد ہے ہمارے اندر, توبہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا چیز آڑے آ سکتی ہے ہمارے توبہ کرنے سے؟ جنہوں نے سوال کیا ہے, پرائیویٹلی سوال کیا ہے, اس وجہ سے ان کا نام تو آپ کو نہیں پتا, لیکن میں تو ان کو جانتا ہوں نا, اور آپ مجھے جانتی ہیں. نہیں نہیں آپ کو, آپ پوری سنیں. تقریباً 2 سال ہو گئے آپ کو, رائٹ؟ 2 سال میں کیا کر کے دیا ہے آپ نے, کیا کر کے دیا ہے آپ نے 2 سال کے اندر؟ کتنے موقع تھے آپ کے پاس دین سیکھنے کے, کتنے موقع تھے آپ کے پاس بات ماننے کے؟ نہیں کیا آپ نے کچھ بھی. اب اس کے اوپر آپ یہ سوال کرتی ہیں کہ کیوں اتنی مشکل ہے, پھر آخر میں بھی مشکل ہوگی, اور کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسے رکھا ہے؟ اتنے اللہ تعالیٰ نے موقع دیے, انکار کرتی رہی, انکار کرتی رہی. What do you know, I follow everything. آپ کا شیطان مسلمان ہو چکا ہے, آپ کا شیطان مسلمان ہو چکا ہے, جیسے نبی کا شیطان مسلمان ہو گیا تھا. اپنے زوم میں مبتلا ہوتے ہیں, اپنے بارے میں اتنا اچھا گمان, آئی فالو ایوری تھنگ. آپ کو پتا بھی ہے ایوری تھنگ ہوتا کیا ہے؟ آپ کو کیا پتا کہ ویدر یو ڈو فالو ایوری تھنگ اور یو ڈونٹ فالو ایوری تھنگ؟ آپ کو شیطان نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے کہ یو فالو ایوری تھنگ. اف یو فالوڈ ایوری تھنگ, آپ ہرگز اس قسم کا سوال نہ کرتی. جی نہیں, میں صرف عالمہ کورس کی بات نہیں کر رہا, میں صرف عالمہ کورس کی بات نہیں کر رہا. عالمہ کورس کرنا کوئی فرض ہے؟ کوئی واجب ہے عالمہ کورس کرنا؟ نہیں, وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ سم تھنگ اسپیسیفک, جنرل. ٹھیک ہے, سنت کو سیکھیں. سنت ہے کیا؟ صحابہ کرام کا طریقہ تھا کیا؟ ٹھیک ہے, اپنے حالات بیان کرنے ہوتے ہیں, حالات میں پوچھنا ہوتا ہے کہ میں, میری زندگی کے یہ حالات ہیں, میں کیا غلط کر رہی ہوں, کیا صحیح کر رہی ہوں. شیطان دھوکے میں مبتلا رکھا ہوا ہوتا ہے, جو ہم غلط کر رہے ہوتے ہیں اس کو صحیح بنا کر کے ہمارے سامنے پیش کر رہا ہوتا ہے, جو ہم صحیح کر رہے ہوتے ہیں اس کو غلط بنا کر کے ہمارے سامنے پیش کر رہا ہوتا ہے. और हम समझ रहे होते हैं आई फॉलो एवरीथिंग, मैंने तो कोई गलत किया ही नहीं। अच्छा, अल्लाह ताला की नाफरमानी के लिए हस्बैंड की परमिशन चाहिए होती है? हस्बैंड की परमिशन का क्या ताल्लुक है इससे? कोई ताल्लुक नहीं है इसके हस्बैंड की परमिशन से। हस्बैंड कहेगा जहन्नुम में कूद जाओ तो कूद जाएंगे हस्बैंड जहन्नुम के अंदर। ला ताअता लिमखलूक फी मासियतिल खालिक, नबी अलैहिस्सलाम सलाम का हुक्म है और ये शरीयत का उसूल है कि अल्लाह ताला की नाफरमानी में किसी मखलूक की फरमाबरदारी नहीं की जा सकती, चाहे वो बाप हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो शौहर हो औरत का। अपनी इस्लाह करना, गुनाहों की जिंदगी से अपने आप को बचाना ये फर्ज है, और इस फर्ज के रास्ते में अगर हस्बैंड भी रुकावट बनता है उसकी भी बात मानना मना है। हस्बैंड की बात मानना मना है, माँ बाप की बात मानना मना है अगर वो गुनाह छोड़ने के रास्ते में रुकावट बनते हैं। इन बातों को समझाया जा रहा होता है, बार बार बयानात के अंदर इन बातों को समझाते हैं, बार बार क्लास के अंदर इन बातों को खोला जा रहा होता है। हम नहीं मानना चाहते इन बातों को, सुनते ही नहीं है हम। पता नहीं कहां हमारा दिमाग होता है, क्या सोच रहे होते हैं हम। तो फिर उसके बाद अल्लाह पे इतराज करते हैं, अल्लाह क्यों ऐसा करता है, अल्लाह कैसे वैसे क्यों करता है। तो औलाद को बुरे माहौल से बचाना, पीयर प्रेशर होता है जब हम उनको इन स्कूलों कॉलेजों के अंदर भेजते हैं ना, तो उनके ऊपर शदीद किस्म का पीयर प्रेशर होता है। वो उनको गुनाहों के रास्ते पे हाथ पकड़ करके चला रहे होते हैं, जो स्कूलों के अंदर कॉलेजों के अंदर उनके दोस्त बनते हैं। स्कूलों कॉलेजों का माहौल, जो वहां पर करिकुलम पढ़ाया जा रहा होता है, क्या क्या उसके अंदर फुहश किस्म की बातें होती हैं, क्या क्या उसके अंदर कला ईमान के खिलाफ उसके अंदर बातें किताबों में लिखी हुई होती हैं। और फिर उनके ऊपर सोने पर सुहागा जो टीचर होते हैं, हिंदू टीचर होते हैं, नॉन मुस्लिम टीचर होते हैं, जो मुसलमान नाम के भी होते हैं, वो भी मुल्हिद होते हैं। उनमें से कितने तो मुल्हिद टीचर होते हैं, काफिर हो चुके होते हैं, वो हमारी औलादों को पढ़ा रहे होते हैं। तो हमारी औलादों का क्या बनेगा फिर, कैसे मुसलमान रहेंगे फिर वो। फिर हमने उनको फोन पकड़ा दिए होते हैं, छोटे छोटे बच्चे 10-10 साल के, 9-9 साल के बच्चे, उनको टैब पकड़ाए हुए हैं, सेल फोन पकड़ाए हुए हैं, सारा का सारा इंटरनेट उनके ऊपर मौजूद है। इंटरनेट के ऊपर क्या क्या चीजें हैं, गुनाह तो छोड़ दें, कुफर है, डायरेक्ट कुफर में चला जाता है बच्चा। ऐसी ऐसी चीजें, चैट ग्रुप्स हैं, ना जाने किस किस किस्म की वहां पर इंटरनेट के ऊपर हर चीज तो मौजूद है इंटरनेट के ऊपर। सारा का सारा कुफर जो है, उसकी सारी मेहनत जो है वो इंटरनेट के ऊपर लगी हुई है, और वो एक्सपोजर जो है वो हम अपने बच्चों को उठा करके दे रहे होते हैं। किसी से पूछते भी नहीं है, मशवरा भी नहीं करते किसी बड़े से कि क्या मुझे देना भी चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो अपने बच्चों की ईमान को मजबूत बनाएं पहले, फिर अगर मजबूरी है कि जी स्कूल भेजना है, कॉलेज भेजना है, कोई अच्छा स्कूल नहीं मिल रहा, इस्लामिक स्कूल, मुसलमानों का, नेकों का स्कूल नहीं मिल रहा, हमें किसी ऐसी स्कूल में भेजना है, तो भाई पहले बच्चों को तैयार तो करें ना उसके लिए, ईमान पे तो मेहनत करें कम से कम उसकी। कल बड़ा मजे का वाकया हुआ हमारे घर के अंदर, कुछ बीफ आया हुआ था, हम वैसे बीफ ज्यादा नहीं खा रहे होते, कुछ हाजमे वगैरह की वजह से। तो खैर बीफ आ गया, तो घर वालों ने इरादा किया कि चलिए जी इसके कबाब बनाते हैं। तो फिर गए बाहर 2-3 दिन पहले, और जाकर के ना वहां से मेरी वाइफ जो है वो कच्चा पपीता लेकर के आई। ठीक है, अब कच्चा पपीता यहाँ पे मिलता नहीं है, तो वो जरा बड़े साइज का था, तो बहरहाल ग्रीन था, तो वो लेकर के आ गई कि इस कच्चे पपीते के, खवातीन की क्लास है ना तो बातें भी आप लोगों के हिसाब से, ठीक है। तो वो कच्चा पपीता लेकर के आई, अब जो है वो मौका नहीं मिल रहा था कि उसको जो है वो गोश्त के ऊपर लगाया जाए, खैर इरादा था कि 2-3 दिन में करेंगे। अब वो जो पपीता था ना, वो देखने में जरा अच्छा लग रहा था, और उसके साथ कुछ एवोकाडो भी लेकर के आई हुई थी, और साथ साथ जो है वो कुछ बनाना भी लेकर के आई हुई थी, केले भी, ठीक है। तो अब इन सबको जो है ना एक फ्रूट ट्रे की शक्ल में उन्होंने डाइनिंग टेबल के ऊपर रख दिया। अब पपीता जो है वो बड़े साइज का भी हो चुका था और उनको मौका नहीं मिल रहा था कि उसको गोश्त के ऊपर लगाया जाए, तो पपीता थोड़ा थोड़ा जो है ना वो पकना शुरू हो गया। उनको फिक्र भी हुई कि कहीं ये सड़ ना जाए, कहीं पक ना जाए, फिर ये काम ही आएगा। तो कल ये हुआ कि याजिज वहां पर माज वगैरह पढ़ रहा था, तो देखा कि भाई इस पपीते के अंदर ना कुछ येलो कलर निकलना शुरू हो गया है, ठीक है ना, यानी ग्रीन जो पपीता था वो अब थोड़ा थोड़ा सा येलो होना शुरू हो गया। तो मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटा इसको ले जा करके ना मम्मा को दे दें, क्योंकि ये पपीता जो है ये पकना शुरू हो गया है, अब ये कच्चा नहीं रहा या कच्चा इसके अंदर से खत्म हो गया है, तो ये बेफायदा हो जाएगा। मुझे तो पता भी नहीं था, उन्हीं की बातों से मुझे पता लगा कि अगर ये पक गया तो फिर ये फायदा नहीं देगा, गोश्त को गलाने का फायदा नहीं देगा, ठीक है। तो अब जब ये मेरा बेटा छोटा 6 साल का है तो वो पपीता लेकर के जाने लगा ना, तो उस वक्त मैंने उससे कहा कि देखा बेटा, आपने देखा ना इसके बराबर में जो येलो बनाना थे ना, जो येलो बनानास थे, तो इस बनानास की सोहबत की वजह से इसके ऊपर भी येलो कलर आना शुरू हो गया। मैं बच्चों को ये समझाना चाह रहा था कि देखो सोहबत की वजह से ना इन रंग पकड़ता है, जैसे उर्दू का मुहावरा है खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, तो मैंने कहा बेटा बनानास को देख करके पपीते ने रंग पकड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। बनानास थे, 7-8 बनानास थे, येलो कलर के थे, वो भी पक गए थे, पहले हम भी उसको ग्रीन ही लेकर के आए थे, वो जल्दी पक गए, येलो हो गए, तो पपीता जो है ना वो उनको देख करके येलो होना शुरू हो गया, ठीक है। ये मैंने बच्चों को समझाया, तो आपको पता है बच्चे ने क्या सवाल किया, बेहतरीन सवाल किया उसने। कोई अगर उस बच्चे के जहन में झांक करके कोई कोशिश करे और ये बताए कि बच्चे ने क्या सवाल किया होगा, है तो बड़ा लॉजिकल सा, कोई अगर सोच के बताए कि उसने मेरी बात सुनकर के क्या सवाल किया होगा। पपीता था ग्रीन और उस ग्रीन के अंदर येलो ट्रेसेस आने शुरू हो गए, और बनानास जो उसके बराबर में रखे हुए थे वो डार्क येलो थे। जी सभी प्राइवेटली लिख रहे हैं, बनानास ग्रीन क्यों नहीं हुए, जबरदस्त। बिल्कुल उसने यही सवाल किया कि अब्बू ये पपीता जो है ये येलो क्यों हो गया, ये ग्रीन, ये यानी बनानास ग्रीन क्यों नहीं हुए, बिल्कुल उसने यही सवाल किया, माशाल्लाह, ठीक है। अब इसका जवाब भी आप अगर दे दें कि पपीते को देखकर बनानास ग्रीन क्यों नहीं हुए, बिल्कुल सही है। तो अब जवाब आप दे दें, येलो बनाना ग्रीन क्यों नहीं, हाँ ठीक है, माशाल्लाह सबने सही सवाल पकड़ लिया। अब जवाब भी दे दें, बनानास मेजॉरिटी में थे बनानास मेजॉरिटी में तो थे, लेकिन अगर उनका ओवरऑल साइज देखा जाए ना तो वो उस पपीते के बराबर ही था, ठीक है ना, क्योंकि पपीता मैंने बताया ना वो जरा बड़े साइज का था, और बनानास भी जो है वो इतने बड़े नहीं थे, वो वैसे तो यहाँ बहुत बड़े बड़े बनानास मिलते हैं। जी ये है जवाब इसका, बनानास पक चुके थे, पपीता कच्चा था। बनानास पक चुके थे, पपीता कच्चा था, और जो कच्चा होता है ना वो दूसरों का रंग पकड़ता है, जो पक्के हो चुके होते हैं वो दूसरों का रंग नहीं पकड़ते। तो मैंने अपने बच्चों को फिर यही समझाया और फिर उसका शुक्रिया अदा किया कि बेटा आपने तो पूरा एक बयान का मौजू अब्बू को अता कर दिया, पूरा एक बयान हो गया इसके ऊपर, तो है ना। तो भाई पक्का बनाएं, अपने आप को पक्का बनाएं, अपने ईमान को पक्का बनाएं, तो फिर दुनिया के माहौल का असर नहीं होगा, ना आप पर होगा ना बच्चों के ऊपर होगा। लेकिन अगर वो कच्चे होंगे और कच्ची हालत में आपने उनको दूसरों के माहौल में भेज दिया, टीवी की सोहबत में बिठा दिया, ड्रामों की सोहबत में बिठा दिया, काफिरों की सोहबत में, गुनाहगारों की सोहबत में भेज दिया, तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं फिर आप, वो अपने ईमान को बचा लेगा, नहीं बचा सकेगा वो अपने ईमान को, क्योंकि वो कच्चा है, सही है। तो पक्का करने से फायदा होता है, कच्चा रखने से फिर नुकसान हो जाता है। तो पीयर प्रेशर जो होता है ना ये इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता, लेकिन वो उस वक्त इफेक्ट करता है जब तक वो खुद कच्चा होता है। आप अपनी निस्बत को मजबूत बनाएं अल्लाह के साथ, अल्लाह के नबी के साथ, और जो नेक लोग होते हैं जिनको उलमा और मशायख कहा जाता है उनके साथ अपनी निस्बत को, अपने ताल्लुक को मजबूत बनाएं। फिर ना तो आपका घर का माहौल आपको मुतासिर कर सकेगा, ना बाहर का मुतासिर कर सकेगा। लेकिन अगर निस्बत ही हमारी कच्ची है, कमजोर है, हम जो है अपने ही आप के अंदर बस खुश रहते हैं कि हाँ मैं तो बहुत ठीक हूं, आई एम फॉलोइंग एवरीथिंग, ऐसे निस्बत मजबूत नहीं होती। आप अकेले तने तनहा को थोड़ी मजबूत हो सकते हैं। अगर इंसान खुद अपनी इस्लाह कर सकता होता तो रसूलों की जरूरत क्या थी? क्या जरूरत थी रसूल भेजने की? हर बंदा खुद ही अपने आप को ठीक कर लेता। अकल दी है ना हर एक ने, हर एक को अल्लाह ताला ने। भाई जिसके पास अकल नहीं होती वो तो मजनून पागल दीवाना कहलाता है, और उसके ऊपर तो कोई जिम्मेदारी नहीं होती। जिम्मेदारी तो होती ही अकल वालों के ऊपर है। तो अकल तो हर इंसान के पास है, तो जब अकल है हर इंसान के पास तो रसूल की क्या जरूरत थी? भाई रसूल भेजा है, किसी वजह से भेजा है ना, अकल काफी नहीं थी ना, इस वजह से रसूलों को भेजा था ना। अब हमें जो है वो ना रसूल की जरूरत है ना हमें कुरान की जरूरत है, हमारी अकल हमारे लिए काफी हो गई है। 1400 साल गुजरने के बाद अकलें काफी हो गई हैं हमारे लिए? नहीं, अकल काफी नहीं है। ठीक है, अच्छा दो तीन और मैसेजेस आए हुए प्राइवेटली, तो अब उनको पढ़ लेते हैं कि माँ बाप के गुनाहों की वजह बच्चों का फ्यूचर खराब होते हैं, पर अगर हम अल्लाह से दिल से माफी मांग लें तो क्या बच्चों का फ्यूचर सही होगा और नेक निकलेंगे? अब तक जो गुनाह कर रहे थे ना और उनका जो बुरा असर बच्चों के ऊपर पड़ रहा था तो वो तो असर उनके ऊपर पड़ चुका, ठीक है, लेकिन अगर हम तौबा कर लेंगे और फिर हम अल्लाह ताला से माफी मांग मांग करके अल्लाह ताला से मदद मांगना शुरू कर देंगे ना, तो फिर अल्लाह ताला इन बच्चों को हिदायत दे देंगे। कैसे हिदायत दे देंगे? अल्लाह ताला उनको किसी अच्छी जगह, नेक जगह जुड़वा देंगे, जोड़ देंगे। तो अब तक जो वो गुनाह करते रहे थे ना वो माफ हो जाएंगे, ठीक है ना, अल्लाह ताला माफ कर देंगे सारे के सारे गुनाहों को, और अल्लाह ताला उनकी ईमान की हिफाजत फरमा देंगे। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है? हमें अल्लाह ताला से अपने गुनाहों पर माफी मांगनी है और फिर अल्लाह ताला से मदद मांगनी है, ठीक है, और फिर अल्लाह ताला ना मदद हमारे पास जो भेज रहे हैं, ठीक है ना, हमें किसी जगह पे जोड़ा अल्लाह ताला ने, हमें किसी क्लास से जोड़ा, हमें किसी शेख से जोड़ा, तो अब हम उनसे सीखें कि अब हमें क्या करना चाहिए आगे, ठीक है ना। भाई अल्लाह ताला से मदद मांगी है तो अल्लाह ताला मदद भेजते भी तो है ना, फिर तो जब मदद भेजते हैं हम कहें कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो फिर ये क्या है, दुआ भी आपने मांगी थी और फिर जब आ गई है मदद तो फिर आप कहते नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो भाई उस मदद को फिर आप इस्तेमाल भी करें ना, सीखें भी ना। दीन मदद होता है, अल्लाह ताला रास्ता दिखाते हैं, सीखने के जराए अता फरमा देते हैं, अब हम सीखना भी शुरू करें और फिर उसके अंदर हम, उसमें बहुत सारी चीजें होंगी, हम खुद कैसे नेक बने, हम खुद कैसे जो है वो तौबा पे के ऊपर कायम रहें, और हम बच्चों के लिए फिर क्या कर सकें, ठीक है ना। बच्चों के लिए भी फिर बहुत सारे मशवरे होते हैं कि ऐसा करें ऐसा ना करें, ठीक है, तो उन चीजों के ऊपर भी अमल करें। तो कोई जरूरी नहीं होता, कोई इसके ऊपर शर्त नहीं है कि जी बस जहन्नुम में तो जाना है बस, नहीं जी हो गया आप तो जहन्नुम का फैसला, कोई जहन्नुम का फैसला नहीं हुआ। आपको क्या पता कि जहन्नुम का फैसला हुआ नहीं हुआ, सिर्फ अल्लाह ताला को मालूम है क्या होने वाला है, हमें तो नहीं पता ना। तो अल्लाह ताला से बेहतरीन गुमान रखें कि अल्लाह ताला मेरी दुआओं को यकीनन पूरा फरमाएंगे। अच्छा एक और मैसेज आया हुआ है कि अगर हम एकदम से अमल नहीं कर पाए कुछ चीज़ों में, और अगर थोड़ा हिकमत से अमल करें जैसे प्यार मोहब्बत से समझा कर, ना के लड़ झगड़ कर और बदतमीजी करके, तो क्या उस पर भी हमें गुनाह पड़ेगा जब तक हम अमल नहीं कर पा रहे सही से? बदतमीजी करना तो खुद गुनाह का काम है ना, लड़ना झगड़ना तो खुद गुनाह का काम है, ठीक है, लेकिन मतलब आपका कहने का जो है ना वो ये है कि आपको लोग रोक रहे हैं, रुकावटें हैं, तो इस वजह से आप फौरन से अमल नहीं कर पा रहे। यानी फौरन से अमल नहीं कर पा रहे का मतलब ये है कि फौरन से फराइज पूरे नहीं कर पा रहे, ठीक है, यही आपका मतलब मैं समझता हूँ कि आप फराइज के ऊपर अमल नहीं कर पा रही बिकॉज रुकावटें हैं। तो आप लड़ना झगड़ना नहीं चाह रही, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पर चले, आप में से पता नहीं क्लास में वो हैं कि नहीं हैं, लेकिन आपको एक मिसाल देते हैं, इस मिसाल से आपको समझ में आएगा इंशाल्लाह, क्योंकि कल रात ही मैंने इनको जवाब लिखा है, ठीक है। इनका सवाल, क्योंकि नाम तो नहीं पता किसी को अगर वो हैं या नहीं है, ये देखें, सवाल भी पोस्ट कर देते हैं। फराइज, ठीक है, फराइज में से वैसे तो नमाज, रोजा, हज, ज़कात तो सबको पता है कि ये फराइज होते हैं, ठीक है, लेकिन औरतों के ऊपर अल्लाह ताला ने एक और फर्ज रखा है जिसको कहते हैं पर्दा, ठीक है ना। पर्दा फर्ज है, लेकिन जैसे कि आपका सवाल है तो वैसे ही इनका भी सवाल था कि भाई ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो पर्दा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इन्होंने इस आजिज को सवाल भेजा, ये पढ़ लें इसको, अगर क्लास में मौजूद हैं तो आपको मैं कह रहा हूँ कि इत्मीनान रखें, किसी को नहीं पता कि आपने ये सवाल भेजा था, ठीक है। नाम तो आपका नहीं है ना कहीं पर, इसके अंदर देखें, पढ़े इसको। ज्वाइंट फैमिली में, इंडियन ज्वाइंट फैमिली, पाकिस्तानी ज्वाइंट फैमिली में भी यही होता है, कोई इंडियन ज्वाइंट फैमिली कोई अलग सी कोई चीज़ नहीं होती। पाकिस्तानी ज्वाइंट फैमिली हो, चाहे अमेरिका में रहते हो या अमरीका पाकिस्तान में रहते हो, सऊदी अरब में रहते हो, ज्वाइंट फैमिली होती है, ठीक है। तो ज्वाइंट फैमिली में पर्दे का कैसा मामूल होना चाहिए, ना महरम पर नजर कितने बार पड़ने से गुनाह है। अब देखिए, इनको इतना नहीं पता, ठीक है, जाहिर है आप पैदाइशी तो इल्म लेकर के नहीं पैदा होते हैं ना, शरीयत का इल्म और क्या गुनाह है क्या सही है इसका इल्म लेकर के हम पैदा तो नहीं होते, ये इल्म तो हमें सीखना होता है। तो इनको ये बात नहीं पता कि ना महरम पर नजर कितनी बार पड़ने से गुनाह होता है। यहाँ पर नंबर ऑफ नजरों का मामला नहीं होता, इनको ये बात नहीं पता थी, तो उन्होंने सवाल कर लिया जैसे कि सवाल करना चाहिए। तो अब जवाब देखें कि अगर शहवत के बगैर नामहरम को देखा तो ये गुनाह सगीरा होता है, ठीक है ना। शहवत के बगैर का मतलब ये कि आप उसको देखें और साथ साथ जो है ना वो कोई शहवानी ख्यालात भी सोचें, ठीक है ना। तो अगर शहवानी ख्यालात बंदा सोचेगा ना तो फिर वो गुनाह सगीरा नहीं रहेगा बल्कि वो गुनाह कबीरा बन जाएगा, निगाहों का जिना बन जाएगा वो, अगर शहवत के साथ यानी शहवानी ख्यालात के साथ किसी नामहरम को देखेंगे। लेकिन अगर ऐसी नजर पड़ गई जैसे कि पड़ती रहती है हर वक्त, राइट, सारी दुनिया में लोग जो है वो पर्दे के साथ तो नहीं रहते, तो निगाह तो पड़ती रहती है, ठीक है। तो ये जो है गुनाह सगीरा है, ठीक है। अब मजीद क्या है, अच्छा ये जो पोस्ट किया है ये आप लोगों से पढ़ा भी जा रहा है कि नहीं, चलिए मैं साथ साथ पढ़ के भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये जरा जब पोस्ट किया है तो आगे पीछे हो गया मामला ना। तो जवाब ये दिया कि जॉइंट फैमिली में पर्दे के लिए सबसे पहले आई टू आई कॉन्टैक्ट खत्म करना होता है, कि जो नामहरम देवर जेठ या दूसरे जो लोग होते हैं कजन्स वगैरह अगर रह रहे हैं साथ, तो उनके साथ आई टू आई कॉन्टैक्ट होता है ना, निगाहों में निगाहें डाल करके देखना, बात करना, आंखों में आंखें डाल के बात करना, इसको खत्म कर दें। नजरों की हिफाजत करें, लेफ्ट पे देखें, राइट पे देखें, नीचे देखें, ऊपर देखें, जहां भी देखें उस बंदे की शक्ल में ना देखें, ठीक है ना। तो सबसे पहले आई टू आई कॉन्टैक्ट को खत्म करें, फिर उसके बाद साथ बैठना, ठीक है ना, होता ना कि जी हाँ भी अभी शाम हुई है तो जरा साथ बैठ के चाय पिए, जरा गपशप करें, साथ बैठना खत्म करें, बिला जरूरत बातचीत करना खत्म कर दें। जब जरूरत वाली बात हो रही है, कोई बहुत जरूरी है इंटरेक्शन करना, तो उस वक्त बात कर लें वरना बातचीत खत्म कर दें। हाथ से हाथ में चीज पकड़ाना, जैसे कि भाभी हैं तो अपने देवर को जो है वो उससे सामान मंगवाना है बाजार से, अब देवर साहब जो है वो सामान लेकर के आ रहे हैं और भाभी के हाथ में पकड़ा रहे हैं और भाभी जो है वो आगे से उनको पैसे पकड़ा रही हैं, नहीं, इस तरह से इंटरेक्शन खत्म करें। उनसे कहते हैं हाँ भाई आप रख दें, मैं उठा लूंगी, पैसे आप रख दें कि भाई मैंने यहां पैसे रख दिए, आप उठा लेना यहां से हाथ में चीज पकड़ाना खत्म कर दें, ठीक है। निकाब नहीं ले सकती, बुरका घर में पहन के नहीं रह सकती, नहीं रहें, बड़ी चादर अपने ऊपर रखना शुरू कर दें, जैसे कि बहुत सारे लोग जो कि बाकायदा पर्दा नहीं कर पाती हैं, वो एक चादर ओढ़ करके रखती हैं। चादर ओढ़ के रखने का क्या मतलब है कि जो लिबास औरत पहनती है उस लिबास से उसका जिस्म झलक सकता है, जिस्म का कोई हिस्सा झलक सकता है, या अगर कोई हिस्सा नहीं भी झलक रहा तो भी जिस्म के जो साख्त होती है वो साख्त नजर आ सकती है। लेकिन अगर अपने ऊपर लंबी बड़ी चादर एक ओढ़ लेगी तो बेशक अपना मुंह नहीं छुपा रही है लेकिन जिस्म की साख्त तो नहीं नजर आएगी ना किसी को, जिस्म का कोई हिस्सा तो नहीं झलकेगा। और ये उस वक्त उसी वक्त करें जबकि घर के अंदर ना महरम मौजूद हो। हर वक्त हो सकता है ना महरम मौजूद ना होते हो, लेकिन जैसे ही एहसास हो कि हाँ इस वक्त कोई ना महरम घर के अंदर आ चुका है तो उस वक्त जो है वो अपने आप को ओढ़ करके इस तरह से रख लें, ठीक है ना। किचन में काम करना है तो किसी तरीके से ओढ़ करके ही काम करें, वहां पर अपने बालों को छुपाएं। औरत के बाल ये सतर होते हैं, सतर, औरत का बाल छुपाना पर्दा नहीं होता, पर्दा तो चेहरा छुपाना होता है, पर्दा तो पूरे वजूद को छुपाना होता है, बाल छुपाना ये सतर छुपाना होता है। सतर का मतलब क्या होता है, जैसे कि मर्द का जो है वो नाफ से लेकर के घुटनों तक सतर होता है, मर्द का क्या होता है नाफ, बेली बटन से लेकर के घुटनों तक ये सतर होता है, उसी तरीके से औरत के बाल सतर होते हैं। अगर ये खुले रह जाएं नमाज भी नहीं हो सकती, नमाज भी नहीं होती अगर बाल खुले रह जाएं, तो घर के अंदर बालों को ढक करके रहें, राइट। क्लासेस और बयानात को खानदान की दूसरी औरतों तक भी पहुंचाना शुरू करें। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, अगर तुम अल्लाह ताला की मदद करोगे अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदमों को जमा देगा। देखें सवाल क्या किया था कि घर के अंदर ज्वाइंट फैमिली है पर्दा कैसे करें, जवाब देखें आप। अब क्या ये स्टेप बाय स्टेप आसान तरीका नहीं बताया जा रहा कि कैसे आप आहिस्ता 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 पर्दा करना शुरू करें और दूसरों को भी इसकी तरफ मायल करना शुरू करें ताकि आपका एक सपोर्ट सिस्टम भी घर के अंदर बन जाए, आप अकेली तने तन्हा ना हो पर्दा का शौक रखने वाली, बल्कि आपकी सास भी पर्दे के बारे में उसको भी एहसास होना शुरू हो जाए, हाँ मुझे भी पर्दा करना था, मैंने अपनी सारी जिंदगी बेपर्दगी में गुजार दी। आपकी नंदे भी जो है वो पर्दे के बारे में संजीदा होना शुरू हो जाए, कम से कम उनको एहसास हो जाए कि हाँ ये गुनाह था बेपर्दगी। तो अपने अल्लाह के दीन की मदद करो, यानी दीन की तबलीग में अपना हिस्सा डालो तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा, लोगों के दिलों में तुम्हारा रोब डाल देगा, लोग तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनना छोड़ देंगे। बेशक वो खुद नेक ना बने लेकिन कम से कम आपके रास्ते में रोड़े अटकाना छोड़ देंगे, अल्लाह ताला ऐसा करेंगे, अल्लाह ताला के ये रिस्पॉन्स होगा आपकी नेकी की तरफ, नेकी की तरफ आपका रिस्पॉन्स होगा अल्लाह ताला का ये, ठीक है। तो ये कहलाता है सुन्नत। जब हम इस यानी दीन सीखना, किसी के साथ इस्लाही ताल्लुक बनाना, उससे सवाल करना पूछना, ये सुन्नत है, ये सहाबा कराम की सुन्नत है। तो एक तो होता है दिन में नीयत कर लेना नेक बनने की, ठीक है ना, अल्लाह ताला से दुआ करना और फिर उसके बाद दवा करना, दवा करना इस दीन सीखने को कहते हैं। अल्लाह ताला इस तरीके से फिर हमें दीन समझा देता है, सिखा देता है। ये जो खातून है ना जिन्होंने ये सवाल किया था, आप यकीन करें इनका सवाल मेरे पास आया होगा कम से कम एक हफ्ता पहले, एक हफ्ता पहले सवाल आया होगा व्हाट्सएप के ऊपर, बहुत सारों के सवाल के जवाब दिए, इनका सवाल जहन से निकल गया, इनका व्हाट्सएप जो है वो नीचे चला गया, मेरी निगाहों में ओझल हो गया, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला ने इनको जवाब दिलवाना था, कल रात को कुछ और तलाश करते करते इनका व्हाट्सएप नजर आ गया। भाई कैसे नजर आ गया, अल्लाह ताला ने दिखला दिया, अल्लाह ताला ने ये लगता है ऐसा ही है और हमारा ये यकीन है कि अल्लाह ताला ने इस तरीके से टाइमिंग सेट करी हुई थी कि इनको एक हफ्ता पहले फौरन जवाब नहीं मिलना था, अल्लाह को बेहतर पता है क्या हिकमत थी इसके अंदर, मुझे तो नहीं पता, राइट। एक हफ्ते के बाद कोई ऐसी जरूरत यकीनन कुछ ना कुछ हुआ होगा कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने कल रात को इनको जवाब दिलवा दिया, हमें नहीं पता क्या वजह थी, अल्लाह ताला को तो पता है ना। تو ہم اپنا کام کریں، اللہ تعالیٰ اپنا کام کرنا جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کب کیا کام کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ ہمیں پہنچائیں گے، لیکن ہم اپنا کام تو پورا کریں نا، ہم سوال تو کریں نا، ہم پوچھیں تو نا، ہم ہیلپ تو مانگیں نا، ہم بہانے تو نہ بنائیں کہ شوہر منع کرتا ہے، شوہر کیا عورتوں سے بات کرنے سے بھی منع کرتا ہے؟ تو بھائی اس عاجز کی اہلیہ بھی تو کام کر رہی ہے نا دین کا، وہ بھی تو سلسلے کے کام میں مدد کر رہی ہے نا، تو جن کو اگر اتنا مشکل ہے کہ شوہر جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کر دے گا، اگر شیخ صاحب سے ڈائریکٹلی بات کر لیں گی تو شوہر صاحب جو ہے پتہ نہیں طلاق دے دیں گے یا کچھ اور کر دیں گے، تو نہ کریں بات، گھر والوں سے بات کریں، بیوی سے بات کریں میری، ان سے کہیں کہ میرے یہ مسئلے ہیں، میں کیا کروں اس کے اندر، کیا غلطیاں کر رہی ہوں، مجھے میری اصلاح کریں، تو میری اہلیہ جو ہے مجھ سے بات کریں گی، مجھے بتائیں گی کہ ہاں انہوں نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں، یہ مسئلے ہیں ان کے، ٹھیک ہے؟ تو بہت سارے اللہ تعالیٰ نے راستے رکھے ہوئے، ٹھیک ہے؟ جو دین سیکھنا چاہے نا، جو دین پر چلنا چاہے، کوئی دنیا کی طاقت اس کو نہیں روک سکتی بھائی، جس کے مدد کے لیے اللہ تعالیٰ موجود ہو اس کو کون روک سکتا ہے بھائی؟ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر عمل کرنے کا سنسیئر ارادہ بنا لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال ہو جائے گی، پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ہم یہ کرتے نہیں ہیں، ہم خود جو ہے نا ہمارے خود نیت ٹھیک نہیں ہوتی ہے، ہم خود نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں دنیا کو چھوڑنا، ہم خود نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ مولوی کہلانا شروع ہو جائیں اپنے خاندان والوں میں، ہم اپنے خاندان والوں کے درمیان جو ہے وہ نکو بن جائیں، ہم بے وقوف سمجھنا شروع ہو جائیں لوگ ہمیں، کہ یہ دیکھو دیکھو یہ تو اس پرانے زمانے کی باتوں پہ پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ دیکھو ان کو تو دنیا میں چلنا نہیں آتا، یہ تو دیکھو یہ تو دنیا کے ساتھ نہیں ہے، یہ تو بے وقوف ہو گئے ہیں، اور ایسے ہو گئے ویسے ہو گئے، ہم یہ باتیں برداشت نہیں کرنا چاہتے اللہ کی خاطر، یہ چیزیں رکاوٹیں بن جاتی ہیں، صرف اور صرف ہمارا اپنا نفس ہوتا ہے اصل میں، یہ رکاوٹ بنتا ہے، اور کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ آخری لائن اس کے اندر کہ عام مومنین کی نصیحت کے بعد کفار کو خطاب ہے کہ اب تمہارا کیا ہوا تمہارے سامنے آ رہا ہے، تمہارا کیا ہوا اب تمہارے سامنے آ رہا ہے، اب کوئی عذر کسی کا قبول نہیں کیا جا سکتا، یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم کا یہی مطلب ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ پچھلی کلاس میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس دنیا کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے معذرت کر لیں، اے اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے، میرا اپنا قصور تھا، نہ میرے شوہر کا قصور تھا، نہ میرے ماں باپ کا قصور تھا، نہ کسی اور کا قصور تھا، میرا اپنا قصور تھا کہ میں نے توبہ نہیں کری، میں نیک نہیں بنی، مجھے معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، یہ دنیا ہے ہی، یہ آزمائش کی بھی جگہ ہے اور یہ معافی کی بھی جگہ ہے، لیکن اگر ایمان ہماری غلطیوں کی وجہ سے اس دنیا میں ہم سے چھن گیا نا، تو پھر قیامت کے دن کوئی معافی نہیں ہوگی، کوئی معذرت وہاں پر قبول نہیں کی جائے گی۔ آگے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والوں اللہ تعالی کی طرف توبہ کرو، ایسی توبت جو کہ نصوحا والی توبہ ہو، سچی توبہ کرو، ہماری طرح کی نہیں کہ بس الفاظ پڑھ لیے یا کچھ ایسے ہی توبہ، نہیں، توبۃ نصوحا کرو، سچی توبہ کرو، عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ تمہارا رب اتار دے تم پر سے تمہاری برائیاں، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں داخل کر دے جنتوں کے اندر جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ تعالی نہیں ذلیل کریں گے اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو کہ اس کے نبی کے ساتھ ایمان لے کر کے آئے، صحابہ کرام جو نبی علیہ السلام کے ساتھ ایمان لے کر کے آئے، ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ذلیل نہیں کریں گے، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے سامنے، بڑی تفصیل ہے اس کے اندر، ان کا نور ان کے سامنے دوڑتا ہوگا. یس آ، یس آ کا مطلب جیسے سعی کے اندر دوڑتے ہیں یا تیز تیز چلتے ہیں، تو یس آ بین ایدیہم ان کے سامنے دوڑتا ہوگا، وبی ایمانہم اور ان کے داہنے ہاتھ پر بھی، یقولون وہ کہتے ہوں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب ہمارے نور کو ہمارے لیے آج مکمل کر دے، واغفر لنا اور ہمیں معاف کر دے. یعنی یہ معافی مانگنے والے لوگ جو ہیں نا، ان کی عادت بن چکی ہوگی معافی مانگنے کی، حالانکہ عمل جو ہے وہ دنیا میں ختم ہو چکا، رائٹ؟ جو معافیاں مانگنی تھی دنیا میں ختم ہو گئیں. عجیب بات، یہ جو ایمان والے ہیں یہ دنیا میں بھی چونکہ معافی مانگتے تھے نا، ان کو عادت پڑ گئی تھی معافی مانگنے کی، اب یہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ ان کی معافی کو کتنے اچھے انداز میں یہاں بیان فرما رہے ہیں، کتنے اچھے انداز میں یہاں بیان فرما رہے ہیں، ان کے پوزیٹو یعنی ان کی تعریف کے طور پر بیان فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ کہیں گے کہ اے اللہ ہماری نور کو مکمل کر دے اور ہمیں معاف کر دے. جبکہ اسی سے دو آیت بلکہ ایک آیت پہلے اس سے کافروں کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں، لا تعتذر اليوم، آج معذرت نہ کرو. اور معذرت انسان جب کرتا ہے تو وہ معافی کے لیے ہی کرتا ہے نا، آئی ایم سوری، پلیز ایکسکیوز می، رائٹ؟ کافروں کو منع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، معافی مت مانگو مجھ سے، معذرت مت کرو، آج تو تمہیں جو تم نے کیا ہے وہ ملے گا، تمہیں اس کا بدلہ ملے گا. جبکہ اس کے برعکس ایمان والے بھی وہی کام کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، لیکن ان کی معافی کو تعریفاً بیان فرما رہے ہیں، انک علی کل شیء قدیر. کیونکہ یہ لوگ دنیا میں بھی اسی طرح کی باتیں کرتے تھے، آخرت میں بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے. یعنی ان کو، یہ جو ایمان والے ہیں نا، جو کہ کامیاب لوگ ہیں، یہ لوگ اپنے نیکیوں کے اوپر فریفتہ نہیں ہوتے. یہ نہیں کہتے کہ آئی ایم ڈوئنگ ایوری تھنگ، میں تو سب کچھ کرتی ہوں. نہیں، ان کو اپنی نیکیاں بھی گناہ لگتے ہیں، یہ اپنی نیکیوں کے اوپر بھی مطمئن نہیں ہوتے ہیں، معافی مانگتے رہتے ہیں. ایسی ان کو عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے معافی مانگنے کی کہ قیامت تک یہ لوگ معافی مانگتے رہیں گے. اور ہمارا کیا معاملہ ہے کہ ہم تو گناہ کر رہے ہوتے ہیں، ان پہ معافی نہیں مانگ رہے ہوتے، اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں تو سب کچھ کر رہی ہوں. یہ ایٹیچیوڈ ڈفرینس ہے، بالکل ڈفرینس آف ایٹیچیوڈ ہے یہ. باقی انشاءاللہ آگے اگلی کلاس میں پڑھ لیں گے. کسی نے ایک سوال بھیجا ہے تو اس کے بارے میں بات کر کے پھر کلاس ختم کر دیتے ہیں کہ سر سے دوپٹہ نان محرم کی غیر موجودگی میں اتر سکتا ہے یا اتار سکتے ہیں. دیکھیں، سر کا جو دوپٹے والا معاملہ ہے نا، یہ ہے ادب سے متعلق، ٹھیک ہے؟ یہ فرض اور واجب نہیں ہے. محرموں کے سامنے سر پہ دوپٹہ رکھنا یا بالوں کو چھپانا یہ فرض واجب نہیں ہے. محرم کے سامنے سر کھول سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ والا جو اچھا ستر بھی جو ہے نا، اس کی بھی بہت ساری ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سر کے بالوں والا معاملہ یہ ہے کہ محرم کے سامنے کھول سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جو سر پہ دوپٹہ رکھنے والی بات ہے نا، یہ جو ہے یہ ادب سے متعلق ہے. اور ادب جو ہوتا ہے نا، یہ اس کا تعلق محرم اور نان محرم سے نہیں ہوتا، بلکہ اگر آپ صرف خواتین کے ساتھ ہیں، محرم مرد بھی نہیں ہے، صرف خواتین ہیں، تو اس وقت بھی سر پہ دوپٹہ رکھنا جو ہے یہ ایک یہ شعار ہے نیکوں کا. اذان کی آواز آ جائے، ٹھیک ہے نا، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، کھانا کھا رہی ہو، تو اس موقع کے اوپر اگرچہ کہ کوئی نان محرم موجود نہیں ہے، لیکن سر پہ دوپٹہ رکھنا یہ سنت ہے نیکوں کی، صحابیات کی سنت ہے اور نیک عورتوں کی سنت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا جو معاملہ ہے وہ اس حد تک ہے، ٹھیک ہے؟ تو اتار سکتے ہیں کیونکہ یہ فرض واجب نہیں ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ سر پہ دوپٹہ بھی رکھا جائے. اب دیکھیں، سر پہ دوپٹہ جو ہوتا ہے اس سے بال چھپتے تو نہیں ہے، دوپٹہ تو ویسے بھی باریک ہوتا ہے، اور دوپٹہ سامنے والے بالوں پر تو ویسے بھی نہیں ہوتا، تو اس سے کوئی آپ سطح نہیں چھپا رہی ہوتی، یہ تو خالصتاً ادب والی چیز ہوتی ہے نا. सर खुला हो तो फरिश्ते नहीं आते, क्या ये बात सही है? नहीं, मुझे नहीं पता, ठीक है, क्योंकि ऐसी कोई हदीस या कोई चीज़ मेरे सामने से नहीं गुजरी है, मुझे याद नहीं है, तो ऐसा मामला आई कैंट से। लेकिन फरिश्तों का जो ना आना है ना, ये एक उसूल की बात इतनी पता है कि जब गुनाह होता है ना, तो उस वक्त फरिश्ते जो हैं वो दूर जाते हैं, हट जाते हैं वहां से, ठीक है। तो चूंकि ये वाजिब और फर्ज है नहीं कि गैर ये महरम के सामने सर ढकना, ये वाजिब और फर्ज नहीं है, तो इस वजह से सर का ना ढकना जो है ये गुनाह भी नहीं है। और जब ये गुनाह नहीं है तो फिर फरिश्तों के वहां से भाग जाने की कोई रीजन नहीं है। तो उसूली तौर पर, अकली दलील के तौर पर तो यही आपको जवाब दिया जा सकता है। बाकी पता नहीं कहाँ पे, अगर आपने कहीं लिखा हुआ पढ़ा है तो फिर हम अपने आप की इस्लाह कैसे कर सकते हैं? हम अपने आप की इस्लाह नहीं कर सकते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। हमें जो है वो, यानी खुद से नहीं कर सकते, हमें उसके लिए गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, हमें उसके लिए पूछने की जरूरत पड़ती है, हमें आइनों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जब हम अपने जिस्म को ठीक करना चाहते हैं ना कि भाई कोई हमारे ऊपर मैल तो नहीं लगी हुई, कोई हमारे ऊपर जो है वो यानी कोई खराब चीज नहीं है हमारे लिबास पर या हमारे चेहरे के ऊपर, तो आईने के सामने खड़े होते हैं ना, बगैर आईने के तो इस्लाह नहीं हो सकती। बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह ताला ने जो है ना वो आईनों का एक निज़ाम रूहानी दुनिया में भी रखा है, जिसको कि मशायख का सिस्टम कहते हैं। सहाबा जब, यानी पहले ज़माने में ये रसूलों का सिस्टम कहलाता था, लेकिन रसूलों के पर्दा फरमा जाने के बाद और वो सिस्टम जब अल्लाह ताला ने बंद कर दिया है, तो उसके बाद जो है ना वो उलमा और मशायख का ये सिस्टम है कि जिस सिस्टम के अंदर हमें अपने आप को दाखिल करना होता है और उनसे फिर हमें ये बातें सीखनी पड़ती हैं, वो हमें गलतियों का बताते हैं। इसी को कहते हैं आईना दिखाना, ठीक है। तो आईनों के बगैर इस्लाह नहीं हो सकती। किचन में बहुत गर्मी होती है, वी शुड कवर इन किचन टू। देखें, अगर नामहरम है ना, तो जहन्नुम की गर्मी को याद करके किचन की गर्मी को बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए कि अगर नामहरमों की मौजूदगी में अपने आप को कवर नहीं किया ना, ठीक है, तो फिर तो जहन्नुम की गर्मी लाजमी है। अच्छा, अब कवर करने के लिए आप कोई ऐसा कपड़ा तराश करें। आजकल तो मार्केट में यानी ऐसे ऐसी फैब्रिक्स मौजूद हैं कि जिसके अंदर कम से कम गर्मी आप कर सकते हैं, टेम्परेचर को रिड्यूस कर सकते हैं फैब्रिक्स के जरिए से, ठीक है। तो नामहरम का मसला तो ये है कि वो तो करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं, किड्स और हस्बैंड से किसने कहा है आपको, बच्चों के साथ पर्दा को थोड़ी होता है, ठीक है ना। सर पे दुपट्टा रखना, भाई दुपट्टे में कौन सी गर्मी लगती है, वो तो पतला सा बारीक, उससे तो पूरा बाल भी नजर आ रहा होता है, तो दुपट्टे से तो गर्मी नहीं होती। लेकिन वैसे भी दुपट्टा भी जो है वो भी कोई फर्ज वाजिब नहीं है। तो अगर खाली अपने बच्चे हैं और हस्बैंड है, तो फिर तो आपको किसने कहा है कि आप किचन के अंदर जो है वो गर्मी बर्दाश्त करें, ठीक है। हाँ, ये और बात है कि अपने यानी आस्तीनों को खोल करके रखना, इसके बारे में भी यानी है, यानी आस्तीनों को ना खोले, ठीक है। बच्चे जो हैं उनके अंदर अगर बेटे बड़े हो गए हैं, बाले हो गए ना, तो उनके सामने पर्दा नहीं करना, लेकिन उनके सामने भी जो है वो अपने लिबास को जरा ठीक करके रखना है, ठीक है। तो लड़कों का ये मत समझे कि जी अब ये भी तो ये नाबालिग हैं तो मैं जैसा भी लिबास पहनू। हमारे यहां ना इन बातों कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हमारे मशायख उलमा जो है ना, इनका बहुत ख्याल रखते हैं, ठीक है। यानी जरूरत है इन सब चीजों की। बच्चों को भी जो है ना आप इस तरह नहीं कर सकते कि भाई ये तो मेरा अपना बेटा है। नहीं, बेटों के साथ भी बहुत एहतियात करनी होती है, बल्कि जो बाप होते हैं बापों को बेटियों के साथ एहतियात करनी होती है, ठीक है ना। ये शैतान जो है ना ये बहुत मर्दूद है। बहुत बुरे बुरे वाकयात दुनिया में हो रहे हैं, हो चुके हैं, बहुत बुरे बुरे, जिनका तस्करा भी नहीं किया जा सकता, और बहुत ज्यादा हो रहे हैं वाकयात, राइट। महरम रिश्तों के दरमियान बहुत ज्यादा बुरे वाकयात हो रहे हैं। तो इस वजह से ना हमारे मशायख ने हमेशा से जो एहतियातें बताई हैं ना, वो इवन महरम रिश्तों में भी करनी होती हैं। भाई शरीफ जो पर्दा है वो नहीं करना होता, लेकिन अपने लिबास का ख्याल जो है वो महरम रिश्तों में भी करना होता है, ठीक है। अब इन्होंने बड़ा मजे का सवाल कर दिया, प्राइवेटली जने शुक्र लिखा है कि मैं इस्लाह करना चाह रही हूँ, ठीक है, चाह रही हूँ, उस तरह लिखते हैं, मैं इस्लाह करना चाह रही हूँ, आप मुझे तरीका बताएं कैसे इस्लाह करना है। भाई पूरी की पूरी ऊपर एक मिसाल लिख करके आपको भेज दी, किसी दूसरे का मैसेज था, है सो कॉल्ड जो है वो हमने मैसेज की प्राइवेसी का भी ख्याल नहीं रखा, ठीक है ना, लेकिन बात समझा दी थी कि भाई नाम नहीं था उनके अंदर उस इस मैसेज के अंदर, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आपको एक एक मिसाल मिल गई, ठीक है ना, तो भाई जिस तरह से ऊपर एक मिसाल आपके सामने रखी है तो इस तरह से आप भी तो देखें ना आप क्या चीज़ मुझे पूछनी है, क्या करना है, तो पूछेंगे तो फिर आपको जवाब मिलेगा ना, वैसे तो नहीं मैं इस्लाह करना चाह रही हूँ बताएं क्या करना है, तो भैया आप बताया तो इतनी दफ़ा दुआ करें अल्लाह ताला से पहले, ठीक है ना, फिर अल्लाह ताला से मदद मांगे और फिर उसके बाद जो है वो पूछें। ये जो क्लासेस ले रही हैं, ये क्लासेस लेना और तवज्जो के साथ सुनना और फिर जिन बातों को समझ लिया है उन पे अमल करना, जो समझ में नहीं आई है उनको पूछना, ये इस्लाह का तरीका है, यही तो इस्लाह है, ठीक है। तो बहुत तवज्जो के साथ इन क्लासेस को लें, बयानात को सुने, ठीक है ना, और उनके अंदर फिर जो जो बातें समझ में आ रही हैं उन पे अमल करना शुरू कर दें, जो समझ में नहीं आ रही है उनको पूछ लें, ठीक है। जैसे कि इन्होंने पूछा, पर्दे के बारे में बहुत बात हुई थी क्लास के अंदर, तो अब इन्होंने कोई क्लास ली होगी जिसमें पर्दे के बारे में बात हुई होगी, तो इनके जहन में सवाल आया कि भाई मैं तो ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरे घर के अंदर तो नामहरम मर्द मौजूद है, मैं कैसे पर्दा करूँ। तो जब ये सवाल आया तो पूछा, आप भी इसी तरीके से पूछें, ठीक है ना, हो सकता है आप ज्वाइंट फैमिली में ना रहती हो, आप किसी और किस्म के मसले में मुब्तला हो, उसके बारे में पूछें, ठीक है। चले कोई और सवाल है, ठीक है, फिर क्लास खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।